डॉक्टर रॉबर्ट यारब्रो, पास्टोरल एपिस्टल्स 17:8, 2 तीमुथियुस 1, 2024 रॉबर्ट यारब्रो और टेड हिल्डेब्रांट। यह डॉक्टर रॉबर्ट डब्ल्यू यारब्रो और देहाती पत्रों पर उनकी शिक्षा, देहाती नेताओं और उनके अनुयायियों के लिए अपोस्टोलिक निर्देश 17:8, 2 तीमुथियुस 1 है। देहाती पत्रों के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है और हम इन व्याख्यानों को देहाती नेताओं और उनके अनुयायियों के लिए एपोस्टोलिक निर्देश का हकदार बना रहे हैं। हम इस व्याख्यान को 1 तीमुथियुस के व्याख्यानों से जारी रख रहे हैं और मैं एक मिनट में उल्लेख करूंगा। यदि आप देहाती पत्रों का लंबा परिचय चाहते हैं तो कृपया 1 तीमुथियुस व्याख्यान पर जाएं और वहां पहला व्याख्यान सुनें और मैं प्रथम और द्वितीय तीमुथियुस और तीतुस को समग्र रूप से देखे जाने के बारे में ढेर सारी टिप्पणियां दें। लेकिन इन विशेष व्याख्यानों में हम दूसरे तीमुथियुस को संभालने जा रहे हैं। हम बस एक मिनट में प्रार्थना करने जा रहे हैं, लेकिन मैं सारांश और समीक्षा से शुरुआत करना चाहता हूं और यहां तक कि आपका परीक्षण भी करना चाहता हूं। यदि आपने 1 तीमुथियुस में इन व्याख्यानों को शुरू कर दिया है तो आप पहले ही यह चार्ट देख चुके हैं और अब हम क्या आपको याद है कि आपने इन व्याख्यानों की शुरुआत में क्या देखा था, यह देखने जा रहे हैं। और मैंने कहा कि आप बाइबल को इस संक्षिप्त नाम पीएमईसी तैयारी, अभिव्यक्ति, विस्तार, स्पष्टीकरण, सुसमाचार की समाप्ति के साथ सारांशित कर सकते हैं। और यह सुसमाचार के अंतर्गत संपूर्ण बाइबल को संदर्भित करता है। सुसमाचार में एक प्रमुख फोकस है, बाइबल में एक प्रमुख फोकस है और वह फोकस अपने बेटे के रहस्योद्घाटन के माध्यम से भगवान है। और हम इस बचाने वाले आत्म प्रकटीकरण के संदेश को ईश्वर का संदेश कहते हैं। हम इसे अच्छी खबर या सुसमाचार कहते हैं, ग्रीक में यूएंजेलियन कहते हैं। यह मसीह के उद्धार कार्य का शुभ समाचार है और संपूर्ण बाइबल को उसी के प्रकाश में देखा जा सकता है और मुझे लगता है कि उसे उसी के प्रकाश में देखने की आवश्यकता है। तो हम बाइबल के 77 या 78% से शुरू करते हैं, जिसे हम पुराना नियम कहते हैं, और पुराना नियम सुसमाचार के लिए पी कुछ है और वह शब्द तैयारी होना चाहिए। यह सुसमाचार की तैयारी है। यह सब कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ है उसका मूल यही है। दूसरे सुसमाचार सुसमाचार की अभिव्यक्ति है। अधिनियम हमें सुसमाचार का विस्तार देता है। और फिर धर्मपत्र, जहां हम इन व्याख्यानों में अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, धर्मपत्र सुसमाचार की व्याख्या है। सुसमाचार कैसा दिखता है? अधिनियमों और यीशु की शिक्षाओं और यीशु के संदेश और यहां तक कि यीशु के व्यक्तित्व में शुरुआत करने के बाद उन व्यक्तियों में प्रवेश किया जा रहा है जो उस पर विश्वास करते हैं, और एक समुदाय और फिर ऐसे समुदाय जो पुष्टि करते हैं कि वह भगवान और उद्धार करता है। इट्स एक कहानी बताता है कि कैसे रोमन दुनिया भर में चर्च स्थापित किए गए और एक मिशन आंदोलन शुरू हुआ जो आज भी काफी प्रभावी है। ठीक है, सामूहिक स्तर पर यह कैसा दिखता है? शिक्षाएं क्या हैं? मान्यताएं क्या हैं? प्रथाएं क्या हैं? चर्च के अस्तित्व और चर्च के विकास की अधिनियम विरासत में नेताओं को क्या सोचना और करना चाहिए? और उत्तर पत्रियों में पाया जाता है और वे सुसमाचार की व्याख्या या सुसमाचार की व्याख्या हैं। और अंततः रहस्योद्घाटन सुसमाचार की परिणति है। चीजें यहीं जा रही हैं, इसलिए मैंने इस शब्द का हवाला दिया जब मैंने यह चार्ट मूल रूप से रिक्त स्थान के बिना सभी शब्दों के साथ दिया था। लेकिन अब आपने इसकी समीक्षा की है और आपको याद है कि यह तैयारी, अभिव्यक्ति, विस्तार, स्पष्टीकरण और समापन है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ खुद को यह याद दिलाना अच्छा है कि यह सब पवित्र शास्त्र का सारा, जैसा कि हम 2 तीमुथियुस 3:16 में देखेंगे, सारा पवित्र शास्त्र ईश्वर प्रेरित है। और जैसा कि पुराना नियम कहता है, परमेश्वर का प्रत्येक शब्द त्रुटिहीन है। वह एक ढाल है। मैं कहता हूं दोष रहित, कुछ अनुवाद कहते हैं परीक्षित। यह अभाव रहित पाया गया है। यह टिका रहता है। यह भरोसेमंद है। और फिर ध्यान दें कि यह समानांतर है कि भगवान का हर शब्द और फिर वह बाइबल के विचारों में ईश्वर और उनके वचन बहुत ही करीब से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ईश्वर अपने पितृत्व में अदृश्य हैं। हमने अभी एक तीमुथियुस के अंत में देखा, किसी ने भी परमेश्वर को उसकी उत्कृष्ट महिमा में नहीं देखा है या नहीं देख सकता है। लेकिन जैसा कि जॉन कहते हैं, ईश्वर का एकमात्र पुत्र जो पिता की गोद में है, ईश्वर के पुत्र का जिक्र करते हुए उसने उसे समझाया है। तो परमेश्वर के वचन के माध्यम से परमेश्वर प्रकट है। और जैसे बाइबल में वचन दोष रहित है, वैसे ही परमेश्वर स्वयं उन लोगों के लिए ढाल है जो उसकी शरण में आते हैं। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, अनुदान दीजिए कि दो तीमुथियुस के हमारे अध्ययन के माध्यम से हम आपकी शरण लेते हुए पाए जाएंगे। जैसे ही हम आपके दोष रहित वचन का अध्ययन करते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि हम में बहुत त्रुटियां हैं, और इसलिए हमें आपकी शुद्धि की आवश्यकता है। हमें आपके धैर्य की आवश्यकता है। हमें आपकी कृपा, आपके नेतृत्व की आवश्यकता है। इसे उन लोगों को देने के आपके वादे के लिए धन्यवाद जो आपके पुत्र और आपके वचन के माध्यम से आपको ढूंढते हैं। हम स्वयं को आपके अच्छे हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम पर आमीन। तो हम जिस विधि का पालन करते हैं उसका एक अनुस्मारक। हम सबसे पहले निरीक्षण कर रहे हैं। हम देखते हैं कि वहाँ क्या है, क्योंकि वहाँ जो है उसे देखना उसमें क्या कहता है उसके बारे में निर्णय लेने से पहले या पहले होना चाहिए। मैंने कल इसका उल्लेख किया था, लेकिन मैं पोस्ट कर रहा हूँ और शायद यह उस वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा जहाँ से आप इन व्याख्यानों तक पहुँच सकते हैं। मैंने जांच की और यह निबंध अभी भी ऑनलाइन है। यह एक स्विस विद्वान का निबंध है जिसने अपने जीवन के अधिकांश समय जर्मनी में पढ़ाया। उसका नाम एडोल्फ श्लैटर था। 1938 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वह जर्मनी के आधुनिक इतिहास के महान बाइबल विद्वानों में से एक थे। वह त्रिमूर्ति में विश्वास करते थे। वह बाइबल की सच्चाई में विश्वास करते थे। जर्मन विश्वविद्यालय में अपने अधिकांश समकालीनों के विपरीत वह क्रूस पर चढ़ाए गए और पुनर्जीवित ईसा मसीह में विश्वास करते थे, और उन्होंने धर्मशास्त्रीय कार्य के लिए पद्धति का महत्व नामक एक निबंध लिखा। और कुछ साल पहले मैंने उस निबंध का अनुवाद किया था और उस पर टिप्पणी लिखी थी, और इसलिए आप इसे उस लिंक पर एक्सेस कर सकते हैं। और यह उस निबंध में है कि श्लैटर ने यह देखने के विचार को रेखांकित किया है कि वहाँ क्या है जो बाइबल के प्रति उनके दृष्टिकोण का एक महान विषय था। आप उसका व्याख्यात्मक अवलोकन कह सकते हैं, यह देखना कि वहाँ क्या है और फिर यह क्या कहता है उसके बारे में निर्णय लेना। लेकिन वह वास्तव में प्रशिक्षण के माध्यम से, धैर्य के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से, अनुशासन के माध्यम से, विनम्रता के माध्यम से और जो आप देख रहे हैं उसे देखने के माध्यम से खुद से बाहर निकलने की आवश्यकता पर बल देते हैं, बजाय इसके कि आप पहले से ही जो सोचते हैं उसे बाइबल के शब्दों पर थोपें और उसे अपनाएं। इस क्षण के लिए उपयुक्त बाइबल के शब्द। हम अमेरिकी राजनीति में ऐसा अक्सर देखते हैं, खासकर चुनावों के दौरान। बहुत सारे राजनेता, वे जानते हैं कि सड़क पर लोग, उनमें से बहुत से, बाइबल से कुछ लगाव रखते हैं। यह अमेरिका में एक तरह से पारंपरिक है। साथ ही अमेरिका में बहुत सारे ईसाई हैं, इसलिए वोट पाने के लिए वे बाइबल की आयतें उद्धृत करेंगे। लेकिन कई बार वे जिस उद्धरण का उपयोग करते हैं उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि वे चाहते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचें, या इसे पूरी तरह से संदर्भ से बाहर कर दिया जाता है। इसलिए हम दो तीमुथियुस को संदर्भ से बाहर नहीं करना चाहते हैं। हम इसे इसके संदर्भ में पढ़ना चाहते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि हम तब और वहां के प्रति वफादार रहें। हमने जो देखा उसके प्रति वफादार रहें क्योंकि हमने इसे ध्यान से पढ़ा और इसे खोला। फिर हम यह कहने जा रहे हैं कि अब इसका हमारे लिए क्या मतलब है। मैंने एक तीमुथियुस के संबंध में उल्लेख किया है कि बाइबल की पुस्तक में उन्मुख होने का एक तरीका उस पुस्तक में उपयोग किए जाने वाले शब्दों की आवृत्ति को देखना है, क्योंकि यह एक अच्छी संभावना है कि शब्दों के प्रकट होने की आवृत्ति और शब्दों के प्रकट होने की आवृत्ति के बीच कुछ संबंध है। पुस्तक का फोकस और पत्रियां किसी को कुछ समझाने के लिए लिखी जाती हैं, तो वहां एक फोकस है। यह केवल एक तरह से मुक्त संगति का भटकाव नहीं है, बल्कि यह शुरू होता है और समाप्त होता है, और वहां एक इरादा होता है। इसलिए यदि हम दो तीमुथियुस में प्रमुख शब्दों को देखें तो हमें कुछ ऐसा मिलता है जो हमने एक तीमुथियुस में भी पाया था, और वह परमेश्वर के लिए शब्दों की प्रधानता है। वितरण अलग है। तो हम कुरियोस को 16 बार भगवान के रूप में पाते हैं, और अक्सर यह बहस का मुद्दा है, क्या यह स्वयं भगवान भगवान की बात कर रहा है? हम कहेंगे गॉड फादर। अक्सर पॉल में अधिक व्यापक रूप से जब वह प्रभु कहता है तो वह पुनर्जीवित प्रभु के बारे में बात कर रहा होता है, वह यीशु के बारे में बात कर रहा है, लेकिन हमेशा नहीं। और मैं आपको पहले ही बता दूंगा, दो तीमुथियुस में कई बार मुझे नहीं पता कि उसका मतलब ईश्वर पिता या ईश्वर पुत्र है, या इससे कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि उसका मानना था कि वे मूल रूप से एक थे। लेकिन भगवान के ठीक बाद आपको भगवान के 13 संदर्भ मिले हैं, और फिर भगवान के ठीक बाद आपको यीशु और मसीह के 13 संदर्भ मिले हैं, लगभग सदैव ईसा मसीह के क्रम में। एक बार यह यीशु मसीह है और हम इसे अध्याय 2 में देखेंगे, लेकिन अधिकांश समय जैसा कि एक तीमुथियुस में है, वह मसीहाई शब्द का उपयोग करता है। मसीहाई ग्रीक में क्रिस्टोस, क्रिस्टोस आइसस, मसीहाई उद्धारकर्ता, नाजरेत के यीशु। और फिर हमारे पास विश्वास है, हमारे पास वचन है, हमारे पास सत्य है, हमारे पास डिडोमी है, और यह वास्तव में देखने लायक है, क्योंकि क्रिया के सभी 6 संदर्भ या डिडोमी शब्द का उपयोग ईश्वर प्रदत्त कुछ है। तो आइए मैं यहां अंग्रेजी को ऊपर लाऊं और इसे इतना बड़ा बना दूं कि हम देख सकें। 2 तिमोथी 1:7, और मैं नए अमेरिकी मानक को उद्धृत करने जा रहा हूं। भगवान ने हमें डरपोक की भावना नहीं दी है, बल्कि शक्ति, प्रेम और आत्मसंयम की भावना दी है। NIV इसका प्रतिपादन करता है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जो आत्मा दी है वह हमें डरपोक नहीं बनाती, बल्कि हमें शक्ति, प्रेम और अनुशासन देती है। किसी भी स्थिति में यह ईश्वर प्रदत्त आत्मा है। 1:9, उसने हमें बचाया और हमें पवित्र जीवन के लिए बुलाया, हमारे द्वारा किए गए किसी काम के कारण नहीं, बल्कि अपने स्वयं के उद्देश्य और अनुग्रह के कारण, जो हमें समय की शुरुआत से पहले मसीह यीशु में दिया गया था। 1:16, प्रभु दया करें। वह यह कि वहां क्रिया देना है, हालांकि इसका अनुवाद शो है, लेकिन यह क्रिया है, इसका मूल अर्थ देना है। प्रभु करे कि उसे दया मिले। प्रभु आपको इस सब में अंतर्दृष्टि देंगे, और विरोधियों को इस आशा में धीरे से निर्देश दिया जाना चाहिए कि भगवान उन्हें पश्चाताप देंगे, उन्हें पश्चाताप देंगे। इसलिए हालांकि क्रिया देना अपने आप में ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है, वास्तव में 2 तीमुथियुस में 8वां सबसे लगातार शब्द और पहली क्रिया है। इसे वास्तव में ईश्वर के कॉलम में बुक किया जाना चाहिए, क्योंकि यह के कार्य का वर्णन करता है ईश्वर। यह ईश्वर का नाम नहीं है, लेकिन 2 तीमुथियुस में इसका प्रयोग हमेशा ईश्वर के कार्य के संदर्भ में किया जाता है। फिर हमारे पास काम या विलेख के लिए शब्द संख्या 9 है। फिर हमारे पास व्यक्ति या मनुष्य के लिए 1 शब्द है। हमारे पास संदर्भ हैं, हमारे पास 5 संदर्भ हैं जिन्हें मैं जानता हूं, और ये सामान्यतः ईश्वर के बारे में ज्ञात बातें हैं। मुझे लगता है कि एक बार यह अधिक सामान्य ज्ञान है, लेकिन मुझे लगता है कि 4 बार यह उस बात की पुष्टि है जो पॉल ईश्वर के बारे में जानता है, या वह और तीमुथियुस ईश्वर के बारे में जानते हैं या जानना चाहिए। तब हमारे पास अनुग्रह है और हमारे पास प्रेम है। और आप में से जो लोग ग्रीक भाषा में रुचि रखते हैं, जब आप ग्रीक में काम के बारे में सोचते हैं, तो आप अच्छे काम या अच्छे काम शब्द के बारे में सोचते हैं। और मैंने 1 तीमुथियुस के संबंध में कहा, अच्छे के लिए 2 शब्द हैं और आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं, ठीक है, मुझे आश्चर्य है कि किस शब्द का उपयोग किया जाता है। और 1 तीमुथियुस और 2 तीमुथियुस दोनों में जो शब्द 6 में से 4 बार उपयोग किया जाता है वह है कलास या कलोन, एगोन कलोन के साथ अच्छा काम, और फिर 2 बार यह अगाथोस है। 2 तिमोथी में वह 2 बार अगाथोस के साथ एगोन का उपयोग करता है और कालोस के साथ बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वह काम के लिए उन विशेषणों के उपयोग में पूरी तरह से सुसंगत नहीं है। और मैं 2 तीमुथियुस के परिचय को यह कहकर समाप्त करूंगा कि 1 तीमुथियुस व्याख्यान को फिर से सुने, क्योंकि यहीं पर मैं वास्तव में देहाती पत्रों, उनके लेखकत्व, उनकी तिथि और इसी तरह के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उसकी पूरी तस्वीर देता हूं। आगे 2 तीमुथियुस संभवतः 2 रोमन कारावास के दौरान लिखा गया था, और यह कारावास समाप्त होता है। मैं आज सुबह ही यूसेबियस द्वारा पॉल का सिर काटे जाने का विवरण दोबारा पढ़ रहा था। पूर्वजों ने जो रिपोर्ट दी थी वह यह थी कि पीटर को उल्टा क्रूस पर चढ़ाया गया था और पॉल का सिर काट दिया गया था। 2 तीमुथियुस गैर पॉलिन के रूप में बहस करने के लिए देहाती पत्रों में सबसे कठिन है। मैंने पहले व्याख्यान में उल्लेख किया था कि पश्चिमी दुनिया में बहुत से लोग सोचते हैं कि पॉल ने 1 और 2 तिमोथी या टाइटस को नहीं लिखा था, लेकिन जो लोग यह तर्क देते हैं वे भी स्वीकार करेंगे कि 2 तिमोथी में बहुत कुछ है जो बहुत बहुत व्यक्तिगत, बहुत विशिष्ट है। पॉल और तिमोथी के बीच यह बहुत व्यक्तिगत और पारस्परिक है, और इसका कोई खास मतलब नहीं है। एक जालसाज यह सब बातें क्यों गढ़ेगा जो इन 2 व्यक्तियों और सहकर्मियों के बीच वास्तविक होने की संभावना है? क्यों इसके लिए यह आवश्यक नहीं है इस बात का जो भी उद्देश्य हो उसे गलत तरीके से लिखा जाए? यह सब प्रशंसनीय विवरण वहां क्यों होगा? तो बहुत से विद्वान कहते हैं वास्तव में यह छद्मलेखिक नहीं है, यह वास्तव में पॉल 1 वास्तविक तीमुथियुस को लिख रहा है। तो जब हम 2 तिमोथी में आगे बढ़ेंगे तो मैं बस इतना ही कहूंगा। और हमारे पास 1 उद्घाटन है, और यह इस तरह से होता है, पॉल मसीह यीशु का 1 प्रेरित है, और हम इसके माध्यम से भगवान की इच्छा का अनुवाद कर सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा ही वह साधन थी जिसके द्वारा दमिश्क रोड पर मसीह पॉल या शाऊल के सामने प्रकट हुए, और इसका अंत पॉल को प्रेरित बनने के लिए यह कमीशन मिलने के साथ हुआ। यह मेरे प्रिय पुत्र तीमुथियुस को मसीह यीशु में दिए गए जीवन के वादे, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से अनुग्रह, दया और शांति के अनुरूप था। अब हम यहाँ कुछ वही विशेषताएं देखते हैं जो हम पहले वाले अभिवादन में देखते हैं। 1 है पॉल की प्रेरिताई, और मेरे पास यहाँ 1 फुटनोट है, और मैं इन छंदों को नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं आपको उनकी याद दिलाऊंगा। यदि आप बाइबल के अच्छे विद्यार्थी हैं तो आप तुरंत 1 कुरिन्थियों 4:9-13 के संदर्भों को पहचान लेंगे। पॉल इस बारे में बात करते हैं कि प्रेरितों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और वे पृथ्वी के मैल की तरह कैसे हैं और वे कितने दलित थे लेकिन हारे नहीं थे और वे कितने तिरस्कृत थे लेकिन वे हतोत्साहित नहीं थे और उन्हें कैसे पीटा गया था लेकिन भगवान ने उन्हें जन्म दिया। तो जबकि प्रेरित अधिक आधुनिक समझ में कभी कभी यह गौरवशाली शब्द होता है और फिर इन प्रेरितों पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया जाता है और वे शक्तिशाली थे और वे चारों ओर घूमते थे और वे चर्चों में प्रसाद या इस तरह की पागल चीजों से अमीर बन गए। वास्तव में सही दिमाग वाला कोई भी व्यक्ति प्रेरित बनने के लिए स्वेच्छा से काम नहीं करेगा क्योंकि यह आराम के जीवन और एक ऐसे जीवन का अंत था जिसमें आप यह निर्धारित करते हैं कि आप कहां सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और किस तरह की छुट्टियों पर जा रहे हैं। लेना, आप कह सकते हैं कि प्रेरितों का जीवन वास्तव में बहुत कड़वा था जब तक कि वे एक दूसरे के साथ संगति में नहीं रहते थे और प्रभु ने उन्हें महिमा और सुंदरता और जो वे कर रहे थे उसकी खुशी देखने में मदद की थी। और मुझे लगता है कि वे ऐसे ही रहते थे और इसलिए उन्होंने इसे सहा, लेकिन जो कुछ उन्होंने सहा वह बहुत घृणित था। इसके अलावा 2 कुरिन्थियों 4:7-12 में पॉल कहता है कि हमारे पास यह खजाना मिट्टी के बर्तनों में है, लेकिन जब आप उस अंश को पढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम सबसे बढ़कर प्रेरितिक हम हैं। यह पॉल जैसे लोग हैं जो सुसमाचार के राजदूत हैं और वह कुरिन्थियों के सामने इसका प्रतिनिधित्व करने की कोशिश कर रहे हैं जो सुसमाचार से भटक रहे हैं और वह उन्हें प्रेरितिक संदेश और सुसमाचार के प्रेरितिक विनियोग पर वापस बुलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे उनमें से कई छोड़ रहे हैं। लेकिन 2 कुरिन्थियों 4 में वह जो बात कहता है वह यह है कि इस मिट्टी के बर्तन के सभी नुकसान हैं और यह कितना दर्दनाक है और यह प्राणियों के आराम के लिए कितना हानिकारक है, लेकिन यह कितना शानदार है क्योंकि जैसा कि वह इसके अंत में कहता है, क्षणिक प्रकाश दुहक, यह एक अल्पकथन है, यह वास्तव में क्षणिक नहीं है, यह उसके जीवन का शेष है और यह भारी दुहक है। लेकिन तुलनात्मक रूप से वे कहते हैं, क्षणिक हल्का दुहक हमारे बीच शाश्वत महिमा का भार पैदा कर रहा है। तो यह स्पष्ट दुख है, लेकिन वास्तव में जब आप इसके अंदर जाते हैं तो यह ऐसा है जैसे यीशु पैशन वीक के अंत में अपनी खुशी के बारे में बात कर रहे हों, मैं अपनी खुशी तुम्हें देता हूं। जब आप पापों के लिए क्रूस पर मरने वाले होते हैं तो आपको क्या खुशी होती है? खैर, जो लोग ईश्वर के साथ संगति में चलते हैं वे उस आनंद को जानते हैं जैसा कि यीशु ने कहा था, वह शांति जो संसार नहीं देता, वह शांति जो संसार नहीं देता। तो पॉल की प्रेरिताई और एक अन्य अंश है जिसका मुझे उल्लेख करना चाहिए, 2 कुरिन्थियों 11:16-12:10 तक, जहां पॉल ने अपने कष्ट गिनाए, कैसे उसके दुश्मनों ने उसका पीछा किया और कैसे वह बिना भोजन, बिना सुरक्षा और बिना आश्रय के था, और फिर भगवान उसे दर्शन दिया, परंतु फिर उसे अपने आप को ऊंचा उठाने से रोकने के लिए उसके शरीर में कांटा चुभाया और उसने सोचा, अच्छा, मैं जानता हूं कि मैं क्या करूंगा। भगवान प्रार्थना का जवाब देते हैं, मैं प्रार्थना करूंगा, वास्तव में मैं 3 बार प्रार्थना करूंगा जैसे यीशु ने गेथसमेन के बगीचे में किया था, और भगवान ने कहा, नहीं नहीं नहीं, और उन्होंने कहा, आपकी प्रार्थना का उत्तर मेरी कृपा है और मेरी कृपा है पर्याप्त। मेरी कृपा आपको कष्ट का यह एहसास देती रहेगी ताकि आप अपनी वास्तविक ताकत की पुष्टि करना जारी रख सकें। आपकी असली ताकत आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं है। आपकी असली ताकत मसीह पर आपकी निर्भरता है, और पॉल ने कहा, जब मैं कमजोर होता हूँ तो मैं मजबूत होता हूँ, वह उस चीज में मजबूत होता है जिसमें वह मजबूत होना चाहता था जो एक प्रेरित होना था। हम इन शुरुआती छंदों में भी प्रमुखता देखते हैं, पीले रंग को देखते हैं, भगवान की प्रमुखता और ईसा मसीह की प्रमुखता, और यहाँ ईसा मसीह को हमारा भगवान कहा जाता है, इसलिए यही एक कारण है कि मैं संभावित संदर्भ के रूप में प्रभु को विशेषाधिकार देता हूँ। पॉल के लेखन में प्रभु संभवतः मसीह को संदर्भित करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, खासकर जब वह कहते हैं, प्रभु कुछ कहते हैं, और फिर वह पुराने नियम को उद्धृत करते हैं। खैर, यह स्पष्ट है कि वह प्रभु के बारे में बात कर रहा है जो पिता है, जो पुराने नियम के शब्दों में पवित्र आत्मा के माध्यम से बोलता है। इन छंदों में हमें उस वाचा भाषा की भी याद दिलाई जाती है जो हमें यहाँ मिलती है। यह हमारा भगवान है, भगवान एक व्यक्तिगत भगवान है। मैंने पहले उल्लेख किया था कि प्राचीन दुनिया में कुछ सौ नामित देवता और देवता, देवी और देवियां और आत्माएं थीं, और लोग कई देवताओं में विश्वास करते थे या कई देवताओं में अविश्वास करते थे, लेकिन चर्च में, जैसा कि इसराइल के समुदाय में ईश्वर एक था और ग्रीको रोमन धर्म के विद्वानों का कहना है कि इनमें से कोई भी ईश्वर व्यक्तिगत ईश्वर नहीं था जिसके साथ आपका कोई रिश्ता था। वे समुद्र के देवता या किसी क्षेत्र के देवता थे, और वे आपको कुछ सुरक्षा प्रदान कर सकते थे या वे आपको कुछ विशेष अनुग्रह देने में सक्षम हो सकते थे, जैसे यदि आपने कुछ बातें कही हो या कुछ प्रसाद दिए हो या कुछ अनुभव प्राप्त किया हो। हो सकता है कि आपका ईश्वर के साथ किसी प्रकार का संबंध हो जो किसी तरह से आपके लिए अनुकूल हो, या आप किसी निश्चित ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हो ताकि ईश्वर आपको नुकसान न पहुंचाए, लेकिन बाइबल में हम लोगों को ईश्वर के साथ संवाद करने के काफी आदि हैं। इब्राहीम को ईश्वर का मित्र कहा गया है, और बाइबल में ईश्वर व्यक्तिगत है। वह हमें हमारे नाम से बुलाता है। वह व्यक्तिगत रूप से लोगों का निर्माण करता है। वह हमें अस्तित्व में बुलाता है, और फिर यद्यपि हम सभी उससे दूर हो गए हैं, वह हमें बचाता है। वह हमें एक एक करके खोजता है, और यह वाचा की भाषा है जिसे हम यहाँ छोड़ना नहीं चाहते हैं, जो न केवल इस भगवान और इस मसीह यीशु के संबंध में है, बल्कि पॉल और तीमुथियुस के बीच भी है। तीमुथियुस, मेरा प्रिय पुत्र, मेरे प्यारे बेटे। अब वह तीमुथियुस का पिता नहीं था, लेकिन विश्वास के घराने में हमारे बीच ऐसे रिश्ते हैं जो केवल पिता, पुत्र, भाई, बहन या बहन, बहन, भाई, भाई या आपके जैसे नहीं हैं। वे वास्तव में गहरे हैं, क्योंकि कुख्यात रूप से कभी कभी हमारे पारिवारिक रिश्ते बहुत खतरे में पड़ जाते हैं या वे अस्तित्वहीन होते हैं। परिवारों में बहुत अधिक कलह हो सकती है, और यहाँ तक कि उनमें अलगाव और नफरत भी हो सकती है, लेकिन विश्वास के घर में, जैसा कि नीतिवचन कहते हैं, एक दोस्त होता है जो भाई से भी करीब होता है। ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम मसीह में विश्वास साझा करते हैं, और वे वास्तव में हमारे अपने परिवारों के लोगों की तुलना में हमारे अधिक करीब हैं। और इसलिए यह भाषा की एक और विशेषता है कि वह यहाँ गूंज रही थी। अंत में मैं उल्लेख करूंगा कि जब वह कहते हैं, मसीह यीशु में मौजूद जीवन के वादे को ध्यान में रखते हुए, यह दो तीमुथियुस का एक वृत्तांत है। जिस तरह आशा और अनुग्रह एक तीमुथियुस में बुकेंड थे, दो तीमुथियुस में पॉल मरने वाला है। वह काफी आश्वस्त है, और संभवतः वह सही भी है, लेकिन आरंभ से संपूर्ण और अंत में वह जीवन की पुष्टि करता है, और वह जानता है कि उसके सांसारिक जीवन का अंत उसके अस्तित्व का अंत नहीं है। वास्तव में यह उन महान चीजों से भी अधिक महान की शुरुआत है जो भगवान ने उसे इस दुनिया में दिखाई है, तो एक बहुत ही सकारात्मक शुरुआत है। और अब हमें पता चला कि वह क्या कहना चाहता है, और एनआईवी में हमारा शीर्षक है थैंक्स गिविंग। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिनकी सेवा मैं अपने पूर्वजों की तरह स्पष्ट विवेक से करता हूँ। पौलुस तीमुथियुस से यह स्पष्ट सचेत बात क्यों कहता रहता है, और मुझे लगता है कि मैंने इस पर पहले भी बात की होगी, लेकिन मैं इसे फिर से करूंगा। और वह पूर्वजों का उल्लेख क्यों करता है? खैर, वह इब्राहीम वंश का है। विशिष्ट रूप से कहा जाए तो वह बिन्यामीन जनजाति से है। वह फरीसियों का फरीसी था। वह यहूदी परंपरा में गहराई से डूबे हुए थे, और हम उनके लेखन के विस्तार से जानते हैं कि उनके बहुत सारे आलोचक थे, और उसके पास ऐसे लोग भी थे जो उसे मरवाना चाहते थे, और उनका तर्क होगा, तुम देशद्रोही हो। और वास्तव में मेरे पास यह यहाँ एक अवलोकन के रूप में है, इसलिए मैं बस इस पर जाऊंगा। एक स्पष्ट विवेक दोहराया गया है, क्योंकि साथी यहूदी पॉल और तीमुथियुस को गद्दार मानते थे। या इससे भी बदतर, यीशु सिर्फ एक गद्दार नहीं था, वह उस प्रतिष्ठान की नजर में एक झूठा भविष्यवक्ता था जिसने कहा था हमें उसे मौत की सजा देनी होगी। वह लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि पुराने नियम में सिखाया गया था, मूसा ने सिखाया था कि झूठे भविष्यवक्ताओं को मार डाला जाना चाहिए, और उन्होंने कहा तू झूठा भविष्यद्वक्ता है, अर्थात हम तुझे मार डालेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि तीमुथियुस को यह याद दिलाने की जरूरत है कि आप एक यहूदी हो सकते हैं जो पुष्टि करता है कि यीशु मसीहा है, और आप इसे स्पष्ट विवेक के साथ कर सकते हैं, क्योंकि पूरे रोमन विश्व में आप अल्पसंख्यकों में अल्पसंख्यक होंगे। और फिर वह कहता है, रात और दिन की तरह मैं तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में लगातार याद करता हूं। वहां अधिक अनुबंधित भाषा है, तुम्हारे आंसुओं को याद करके, और हम नहीं जानते कि वह क्यों रो रहा था, लेकिन यह जानते हुए कि तीमुथियुस दबाव में था, या हो सकता है कि यह आखिरी बार हो जब उन्होंने अलविदा कहा हो, तीमुथियुस रोया हो, हमें नहीं पता कि वह क्यों रोए। परंतु वह कहता है, मैं तुझसे मिलने की अभिलाषा करता हूं कि आनंद से भर जाऊं। मुझे आपके सच्चे विश्वास की याद आती है, जो पहले आपकी दादी लोइस और आपकी माँ यूनिस में रहता था, और मुझे विश्वास है कि अब आप में भी रहता है। दूसरा अवलोकन जो मैं यहाँ करूँगा वह यह है कि प्रेरितिक भक्ति कृतज्ञता प्रदर्शित करती है। मुझे लगता है कि हम यह कहना चाहेंगे कि पॉल प्रभु के करीब था, और इसका लक्षण क्या है? खैर, धन्यवाद। वह मरने वाला है, लेकिन वह आभारी है। प्रथम तीमुथियुस का अंत। यदि हमारे पास संतोष है, यदि हमारे पास भोजन और वस्त्र हैं, तो हम संतुष्ट रहेंगे। वह उसे जी रहा है। अपनी मृत्यु की पूर्व संध्या पर भी वह संतुष्ट है। हम एक प्रार्थनाशीलता भी देखते हैं। हम प्रेम को दूसरों की पुष्टि, तिमोथी की माँ और दादी की पुष्टि और तिमोथी की पुष्टि के रूप में देखते हैं। और फिर हम मसीह में संगति के आनंद की लालसा देखते हैं। तो ये सुसमाचार के कुछ संकेत हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, और वे किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में और भी अधिक उल्लेखनीय हैं, जो अगर मैं जेल में होता और मैं मृत्युदंड पर होता, तो मुझे नहीं पता कि मैं इस तरह के हल्के स्पर्श और इस तरह के आशावाद के साथ लिख पाऊंगा या नहीं, और इस प्रकार की अन्य निर्देशितता। लेकिन पॉल उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां उसके पास अपनी स्थिति पर एक दृष्टिकोण था, इसलिए वह हताश, भयभीत या डरा हुआ नहीं लगता। अब हमारे पास सुसमाचार में पॉल के प्रति वफादारी की अपील है। इस कारण से मैं आपको ईश्वर के उपहार को लौ में जलाने की याद दिलाता हूं। फिर पीला रंग ईश्वर भाषा है, और जो लाल आप देखते हैं वह आदेश है। मैं आपको लौ में पंखा चलाने की याद दिलाता हूं। अब वह इसे कूटनीतिक तरीके से करता है, वह वास्तव में इस कारण से आग में झोंकने का आदेश नहीं देता है। वह कूटनीतिक रूप से कहते हैं, इस कारण से मैं आपको भगवान के उपहार को आग में झोंकने की याद दिलाता हूं। वहां उपहार के लिए करिश्मा शब्द है। इससे हमें करिश्माई शब्द मिलता है। लेकिन यह कुछ ऐसा है जो भगवान हमें देता है, जो मेरे हाथ रखने के माध्यम से आप में है। क्योंकि ईश्वर ने हमें जो आत्मा दी है, वह हमें डरपोक नहीं बनाती, बल्कि हमें शक्ति, प्रेम और आत्मनुशासन देती है। इसलिए वह चाहता है कि तीमुथियुस स्थिर हो जाए, वह उस उपहार को याद करे जो उसे दिया गया था, उसे प्राप्त पवित्र आत्मा की शिक्षा को याद रखे कि पवित्र आत्मा हमें स्थिर करता है, वह हमें प्रोत्साहित करता है, वह हमें शक्ति और पर्याप्तता की भावना देता है इत्यादि। इसलिए हमारे प्रभु के विषय में या मुझसे जो उसके बंदी हैं, गवाही से लज्जित न होना, बल्कि परमेश्वर की शक्ति से सुसमाचार के लिए कष्ट सहने में मेरे साथ शामिल हों। और फिर जैसे एक तीमुथियुस में, जहां वह पहले तीमुथियुस को प्रोत्साहित करता है और फिर वह उसकी गवाही में जाता है, यहां वह प्रोत्साहित करता है, वह तीमुथियुस को उकसाता है और फिर वह पॉल की व्यक्तिगत गवाही में इतना नहीं जाता है, लेकिन हम एक सामाजिक अनुस्मारक कह सकते हैं, मुक्ति के सिद्धांत की याद दिलाता है, इस बात की याद दिलाता है कि पॉल को तीमुथियुस को मजबूत बने रहने की याद क्यों दिलानी पड़ी। तीमुथियुस को परमेश्वर ने बचा लिया है, वह ऐसी स्थिति में है जो स्पष्ट रूप से खतरनाक है, लेकिन वह वहां है क्योंकि भगवान ने उसे वहां बुलाया है। तो आशा है, उसने हमें बचाया है और हमें बुलाया है। कुछ अनुवादों में कहा गया है, एक पवित्र बुलाहट के साथ, एक अलग अलग जीवन जीने की बुलाहट के साथ। NIV इसे हमें पवित्र जीवन के लिए बुलाए जाने के रूप में समझता है और यह काम भी करता है। एक जीवन, यहाँ पवित्र का अर्थ है अलग से समर्पित होना, ईश्वर की सेवा और सुसमाचार के आह्वान के लिए समर्पित होना, न कि हमारे द्वारा किए गए किसी काम के कारण। तो मोक्ष कार्यों से या मानव उपलब्धि या प्रदर्शन से नहीं है, बल्कि उसके अपने उद्देश्य के कारण है। क्या आप परमेश्वर का उद्देश्य समझते हैं? मैं भगवान का उद्देश्य नहीं समझता। ईश्वर तो ईश्वर है, उसके अपने उद्देश्य हैं। तो हमारा उद्धार एक रहस्य है। अब मुझे पता है कि संदेश को उपयुक्त बनाने और हां कहने के लिए मैंने क्या कदम उठाए हैं, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता, ठीक है, मैं बच गया हूं क्योंकि मैं। हम प्रभु के कारण बच गए हैं। भगवान का एक उद्देश्य था। अपनी उदारता के रहस्य में उसने हमें कुछ ऐसा दिया जिसके हम हकदार नहीं थे, अर्थात उसने अपने उद्देश्य और अनुग्रह के कारण हमें बचाया। यह अनुग्रह हमें समय की शुरुआत से पहले मसीह यीशु में दिया गया था। वह चीज अर्जित करना बहुत कठिन है जो आपके जन्म से पहले आपको दी गई थी, लेकिन वह मुक्ति को इसी तरह चित्रित करता है। मैंने पहले के एक व्याख्यान में उल्लेख किया था कि पॉल ने समय से पहले और उस समय मुक्ति का चित्रण किया है जब भगवान ने इसका वादा किया था, उस समय जब मसीह इसे सक्षम करने के लिए मर गया, उस समय जब हम इसका अनुभव कर रहे हैं और उस समय जब हम अंतः महिमा प्राप्त करेंगे। और जब हम जाते हैं और प्रभु के सामने खड़े होते हैं तो सिद्ध हो जाते हैं। तो मोक्ष अतीत है, पॉल में यह वर्तमान है और यह भविष्य है, और वह इनमें से किसी भी स्थान पर इसके बारे में बात कर सकता है। यह समग्रता है, लेकिन यहां वह समय की शुरुआत से पहले इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन अब वह यह भी कहते हैं कि यह हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के माध्यम से प्रकट हुआ है, जिन्होंने मृत्यु को नष्ट कर दिया है और सुसमाचार के माध्यम से जीवन और अमरता को प्रकाश में लाया है। फिर से एक तरह से पॉल की अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हुआ। वह जानता है कि सुसमाचार द्वारा प्रकाश और अमरता को प्रकाश में लाया गया है, और यह उसके पुनरुत्थान की बात कर रहा है, लेकिन पुनर्जीवित होने के लिए उसे मरना पड़ा। और वह ऐसे ही नहीं सो गया और मर गया, या कोविड या किसी और चीज से मर गया। वह हमारे पापों के लिए जानबूझकर मरा। परमेश्वर ने उसे, जो पाप से अज्ञात था, हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। 2 कुरिन्थियों 5:21। इसलिए उन्होंने मृत्यु को नीचे ले जाकर मृत्यु को नष्ट कर दिया। पाप का अंत बुरा ही होता है। बहुत पाप था जिसके लिए मरना पड़ा। उसने किया। वह परमेश्वर के लोगों के पापों के लिए मर गया। वह हमारे पापों को कब्र में ले गया। उसने हमारे स्थान पर परमेश्वर का क्रोध सहा। और फिर वह उठे यह दिखाते हुए कि मृत्यु पराजित हो गई है। भगवान ने हमारे अपराध को मिटाने और हमें अपनी कृपा और आने वाले विश्व में एक भविष्य देने का वादा किया है। ये सभी बातें मसीह, प्रतिज्ञा किए हुए, अभिषिक्त यीशु, नासरत के यीशु के कारण वास्तविक और सत्य हैं। और इस शुभ संदेश में मुझे एक अग्रदूत, एक उद्घोषक और एक प्रेरित और एक शिक्षक नियुक्त किया गया। यही कारण है कि मैं जो कुछ भी हूं भोग रहा हूं। आप देखिए, वह जेल में है। फिर भी यह शर्म की बात नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने किस पर विश्वास किया है। और मुझे विश्वास है कि जो कुछ मैंने उसे सौंपा है, उसकी वह उस दिन तक रक्षा करने में सक्षम है जिस दिन वह परमेश्वर के सामने खड़ा होकर हिसाब देगा। जो तुमने मुझसे सुना है रख लो। यह मुझे 1 तीमुथियुस के अंत की याद दिलाता है। वह कहता है, जो तुम्हें सौंपा गया है उसकी रक्षा करो। एक ही तरह की बात। पॉल का कहना है कि मुझे विश्वास है कि मैंने जो उसे सौंपा है, ईश्वर उसकी रक्षा कर सकता है। आपको जो सौंपा गया है उसकी रक्षा करनी होगी। ध्वनि शिक्षण का पैटर्न रखें। और यह सिर्फ पाठ्य पुस्तक की जानकारी नहीं है। यह पांडित्य की तरह नहीं है। ठीक है, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। मैं हर दिन इसका निरीक्षण करूंगा। मैं अपनी समय सारिणी या क्रिया प्रतिमानों या कुछ और पर विचार करूंगा। इस उत्तम शिक्षा को अपने साथ रखें। और ग्रीक में यह विश्वास और प्रेम है जो मसीह यीशु में है। तो आप इस शिक्षा को ईश्वर के साथ संबंध में रखें और एक प्रेम जिसमें ईश्वर शामिल है, इसमें ईश्वर के लोग शामिल हैं, इसमें दुनिया में ईश्वर के उद्देश्य शामिल हैं, क्योंकि यह मसीह यीशु के साथ संबंध में पाया जाता है। यह वास्तव में एक पूर्ण, समृद्ध और संतुष्टिदायक आदेश है। ध्वनि शिक्षण का वह पैटर्न बनाए रखें। अच्छी जमा राशि की रक्षा करें। और उस जमा का मतलब यह भी हो सकता है, इस शब्द का मतलब खजाना भी हो सकता है। इस गौरवशाली खजाने की रक्षा करें जो आपको सौंपा गया था, मुक्ति का यह शब्द। हम में रहने वाले पवित्र आत्मा की मदद से इसकी रक्षा करें। और आम तौर पर पॉल में बोलते हुए, जब हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो हम में, अगर यह मसीह के बारे में बात कर रहा है, यह चर्च के बारे में बात कर रहा है, हम में कुछ, लगभग हमेशा आप हमारे बीच इसका अनुवाद कर सकते हैं, क्योंकि बहुवचन वितरणात्मक है। और इसलिए निश्चित रूप से इसे हर किसी में होने के लिए व्यक्ति में होना चाहिए। लेकिन कभी कभी अंग्रेजी में, क्योंकि यह आप में है और आप मैं हो सकते हैं और हम नहीं, ग्रीक में एक अंतर है। और वह तुम में नहीं कहता व्यक्तिगत एक वचन। वह कहते हैं हमारे यहां, यह बहुवचन है। तो ध्यान रखें कि यह भी कलीसियाई है। पवित्र आत्मा अपने लोगों के बीच निवास करता है, न कि केवल व्यक्तिगत रूप से हम में। सबसे पहले हम देखते हैं कि तीमुथियुस की बुलाहट की भावना उसके मंत्रालय की दृढ़ता का अभिन्न अंग है। पॉल चाहता है कि उसे प्रोत्साहन मिले और वह मजबूती से खड़ा रहे। वह उसे फिर से यह याद रखने के लिए कहता है कि वह स्वयं इसमें शामिल नहीं हुआ है। भगवान ने उसे इसमें बुलाया। उस पर हाथ रखे गए, अनुमान लगाए गए। वह कोई भ्रम नहीं था। और हमारे लिए अपनी जड़ों को याद रखना महत्वपूर्ण है। और इसलिए वह उन्हें वहां बुलाता है। दूसरे पवित्र आत्मा कायरता पैदा नहीं करता है, चाहे वह डरने और भागने की कायरता हो या चाहे वह आलस्य और सगाई करने से इनकार करने की कायरता हो, बल्कि पवित्र आत्मा हमें शक्ति, प्रेम और स्पष्ट दिमाग के साथ आगे बढ़ाता है। और यदि हमें वे चीजें नहीं मिल रही हैं, तो हमें उन्हें ईश्वर से मांगना जारी रखना होगा, क्योंकि ईश्वर यही देता है। तीसरा, सुसमाचार सेवा हमें दबाव में ले जा सकती है और हमें इससे अलग नहीं कर सकती। श्लोक 8 कहता है, सुसमाचार के लिए कष्ट सहने में मेरे साथ शामिल हो जाओ। कभी कभी लोग मोक्ष के बारे में सोचते हैं और वे आशीर्वाद के बारे में सोचते हैं और वे सोचते हैं कि भगवान उनके पास आएंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और ऐसा होता है। लेकिन कभी कभी जब हम भगवान की पुकार का जवाब देते हैं तो हम बहुत गर्म पानी में फंस जाते हैं। और यह ईश्वर पर निर्भर है, वह हमें कहाँ ले जाता है और वह हमारा क्या उपयोग करना चाहता है, और हम या तो एक शानदार लाभ के रूप में क्या आनंद ले सकते हैं या हम बहुत चुनौतीपूर्ण कठिनाई के रूप में क्या सहन कर सकते हैं। चौथा, सुसमाचार का बचाने का कार्य सांसारिक जटिलताओं से परे है और यह पुष्टि करता है कि मृत्यु भी आस्तिक को मसीह में ईश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। यदि आप श्लोक 9 और 10 पर वापस जाते हैं तो वह ईश्वर के शाश्वत उद्देश्यों के बारे में बात करता है, जिसे हम में से कोई भी देख नहीं सकता है या जिसके बारे में नहीं जानता है, और फिर हमारे उद्धारकर्ता ईसा मसीह के प्रकट होने के माध्यम से ईश्वर के उद्देश्यों को कैसे प्रकट किया गया है, जिन्होंने मृत्यु को नष्ट कर दिया है, और सुसमाचार के माध्यम से जीवन और अमरता को प्रकाश में लाया है। यह सब सांसारिक जटिलताओं, सांसारिक विरोध, राज्यों के उत्थान और पतन और देशों के उत्थान और पतन से परे हैं। इससे भी बड़ा कुछ दुनिया में चल रही वास्तविक खबर है, भगवान का राज्य।
5.
पौलुस की स्वयं की पुकार और उसके परिणामों से तीमुथियुस को उत्साहित होना चाहिए जब पौलुस श्लोक 11 और 12 में अपनी नियुक्ति के बारे में बात करता है और वह क्यों पीड़ित है, वह शर्मिंदा क्यों नहीं है, वह कैसे जानता है कि उसने किस पर विश्वास किया है और वह कैसे आश्वस्त है कि वह ऐसा करने में सक्षम है। उस दिन के लिए जो कुछ उसे सौंपा गया है उसे अपने पास रखो। पॉल का उदाहरण तीमुथियुस के लिए एक सीधा प्रोत्साहन है, विशेष रूप से तीमुथियुस और पॉल दोनों इस बात से अच्छी तरह परिचित होंगे कि पॉल इस पत्र में तीमुथियुस को एक विरासत सौंप रहा है। यदि हम ट्रैक और फील्ड के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास रिले दौड़ है और आप रिले दौड़ में किसी को बैटन पास करते हैं और पॉल एक बैटन पास कर रहा है। उसका फोन आया था, उनके सामने चुनौतियां थीं, भगवान ने उसे जन्म दिया। पॉल आश्वस्त है कि यह सब ईश्वर का कार्य है और वह ईश्वर द्वारा दी गई हर चीज की पुष्टि करता है। तीमुथी को भी चाहिए। अंततः मसीह और आत्मा की सहायता से हमें जो प्राप्त होता है उसके प्रति विश्वासयोग्यता मंत्रालय की फलदायिता की नींव है। हमने आत्मा में जो प्राप्त किया उसके प्रति निष्ठा, पवित्र आत्मा, पुनर्जीवित मसीह की आत्मा जो हमारे बीच में निवास करती है और हम में निवास करती है की सहायता से आपको सौंपी गई अच्छी धरोहर की रक्षा करें। यह मंत्रालय की फलदायिता की नींव है। अब यह शिक्षण के इस पैटर्न और इस जमाव में एक गहरी नींव रखता है। इसका अर्थ है बाहर रहना, हमारे दैनिक अनुभव में इसकी पुष्टि। यह ध्वनि शिक्षण के इस पैटर्न के विस्तार का जीवन मानता है। इसलिए जब आपके पास अच्छे शिक्षण की बहुत गहरी समझ नहीं है तो संदेह करना और अस्थिर होना आसान है। लेकिन तीमुथी, जैसा कि यहाँ लिखा जा रहा है, के पास कम से कम 15 साल का नया सदस्य प्रशिक्षण है, और इसलिए पॉल इस जानकारी को उस तक पहुँचाने और उसे मजबूत बने रहने का आग्रह करने में आश्वस्त हो सकता है। जैसे जैसे हम अध्याय के अंत तक पहुँचते हैं, हमारे पास बेवफाई और वफादारी के उदाहरण हैं। और आपको याद होगा कि यहाँ का पैटर्न एक तीमुथियुस की तरह है, जहाँ एक अभिवादन है और फिर एक चुनौती और गवाही है कि पॉल के जीवन में भगवान कैसे पर्याप्त थे, और फिर हाइमेनियस और अलेक्जेंडर के बारे में एक चेतावनी। खैर, यहाँ मामला थोड़ा अलग है, लेकिन कुछ समानताएं भी हैं। सबसे पहले वह कहता है कि एशिया प्रांत में सभी ने मुझे छोड़ दिया है, तो पॉल और उसके सुसमाचार से विमुख हो गया है। यह तब भी हुआ जब पॉल अपनी पहली कैद में था। हमारा मानना है कि वह रोम में था, वह फिलिपी में था, और वह इस बारे में बात करता है कि कितने लोग पॉल के समानांतर सुसमाचार का प्रचार करके उसका विरोध कर रहे थे, और वह कहता है कि वह बेईमानी की मंशा से ऐसा कर रहा है, एक तरह से उसे बुरा दिखाने के लिए, या उसके खर्च पर वे प्रतिद्वंद्वी चर्च स्थापित कर रहे थे। और पॉल कहते हैं, ठीक है, जब तक वे मसीह का प्रचार कर रहे हैं मैं आनंदित रहूंगा, और वे मुझसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन यदि वे मसीह का प्रचार कर रहे हैं तो भगवान इसे सुलझा लेंगे। और यहां भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। एशिया प्रांत के सभी लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, यहां तक कि फिगेलुस और हर्मोजेंस भी, और हम इन लोगों के बारे में और कुछ नहीं जानते। हम बस इतना जानते हैं कि उन्होंने पॉल को छोड़ दिया। फिर अधिक सकारात्मक रूप से, प्रभु उनेसिफोरस के घराने पर दया दिखाए, क्योंकि वह अक्सर मुझे ताजा करता था और मेरी जंजीरों से शर्मिंदा नहीं था। यहाँ एक विद्वान का मानना है कि भाषा से यह संकेत मिल सकता है कि उनेसिफोरस अब मर चुका है, लेकिन इसके विपरीत श्लोक 17 में, जब वह रोम में था, उसने मुझे तब तक बहुत खोजा जब तक कि उसने मुझे नहीं पा लिया। प्रभु करे कि उस दिन उसे प्रभु की दया प्राप्त हो। इफिसुस में उसने कितने प्रकार से मेरी सहायता की, हम इन चीजों का विवरण नहीं जानते हैं, लेकिन ये जानकारी के अंश हैं जो तीमुथियुस के लिए प्रासंगिक होंगे और तीमुथियुस को पॉल की स्थिति को समझने में मदद करेंगे। वह लोगों को सुसमाचार से भटकते हुए देख रहा है। इसका असर तिमोथी पर भी पड़ने वाला है। लेकिन सकारात्मक रूप से, आपके पास ओनेसिफोरस का वफादार भाव और उसने जो बलिदान दिया और वह साहस जो उसने दिखाया और जो अच्छे काम उसने किए, यह तीमुथियुस के लिए एक प्रोत्साहन हो सकता है, जैसे नकारात्मक समाचार तीमुथियुस के लिए एक प्रोत्साहन हो सकता है, ताकि वह उन खतरों से अवगत हो सके जिनका उसे सामना करना पड़ सकता है, और पॉल के साथ और उसके लिए प्रार्थना करने के लिए भी एक प्रोत्साहन हो सकता है। एक ओर वह वीरान है, दूसरी ओर उसे प्रोत्साहित किया गया है। ये दोनों चीजें हैं जिन्हें तीमुथियुस पॉल के साथ प्रार्थना संगति में साझा कर सकता था। मुझे यकीन है कि वे इसमें रहते थे। हम इस अध्याय को इस अवलोकन के साथ समाप्त करते हैं कि कैसे प्रेरितिक मंत्रालय में और देहाती मंत्रालय में तब और अब लोग ऐसा कर सकते हैं, इतनी बड़ी गिरावट हो। और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आप उतना ही अधिक लोगों को ऐसे काम करते और ऐसे निर्णय लेते हुए देखते हैं जिनकी आपने अपेक्षा नहीं की होती है। आप शायद उनके साथ स्कूल में रहे होंगे, आप शायद उनके साथ मदरसा में रहे होंगे, हो सकता है कि आप उनके साथ चर्च स्टाफ में रहे हों, और फिर ऐसे घटनाक्रम होते हैं जो आश्चर्यजनक होते हैं। यहीं पर हमें ईश्वर के उद्देश्य पर विश्वास करना है, और हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम प्रभु से बंधे हैं, और हमने जो शिक्षा प्राप्त की है उसके प्रति हम गहराई से प्रतिबद्ध हैं। मुझे लगता है कि एक श्लोक जो मेरे साथ घटित होता है, शायद किसी भी अन्य श्लोक से अधिक हो, हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। मेरे पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो मेरे मानस में बाइबल की आयतों के प्रभावों का मिलान कर सके। लेकिन मैं खुद को अक्सर यह सोचते हुए पाता हूँ कि नरक के द्वार चर्च पर हावी नहीं होंगे। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं चारों ओर देखता हूँ और मुझे ऐसी अद्भुत चीजें दिखाई देती हैं। कम से कम उत्तरी अमेरिका में चर्च में मुझे बहुत सारी नकारात्मक चीजें दिखाई देती हैं, या मैं लोगों को गिरते हुए देखता हूँ। लेकिन मुझे वह दृढ़ विश्वास रखना होगा जो मुझे लगता है कि पॉल के पास था। भले ही हर कोई उसे छोड़ दे, अगर वह मसीह के प्रति वफादार रहा है तो उन्हें समस्या है, उसे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वह मसीह का है और मसीह पॉल के जीवन और चर्च में अपने उद्देश्यों के प्रति वफादार रहेगा। लेकिन लोग बड़े प्रोत्साहन वाले भी हो सकते हैं, और विशेष रूप से पादरी के रूप में हम अक्सर समस्याओं से अवगत होते हैं, और बाइबल कहती है रोने वालों के साथ रो, और इसलिए आप अन्य लोगों के लिए बोझ उठा सकते हैं। और यह अच्छा और अच्छा है कि हम उनकी आत्माओं के चरवाहे के रूप में ऐसा करते हैं, लेकिन हमें सावधान रहना होगा, और इसका संबंध कभी कभी व्यक्तित्व के प्रकारों से होता है। कुछ प्रकार के व्यक्तित्व उदासी में डूबे रहना पसंद करते हैं। अभी सुसान कैन की एक किताब है जो बिटर स्वीट नाम से लोकप्रिय है, और पूरी किताब कुछ लोगों की मानसिकता के बारे में है जो सिर्फ दुखद चीजें पसंद करते हैं। यिर्मयाह शायद वैसा ही रहा होगा, मैं नहीं जानता। पॉल ऐसा ही रहा होगा, वह एक व्यक्तित्व प्रकार है। कुछ लोग बहुत खुश होते हैं और कुछ लोग, अंग्रेजी में एक शब्द है लुगुब्रियस, यह दुखद भी लगता है। क्या आप कामचोर व्यक्ति हैं? और यदि आप हैं तो आप नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो चरित्रवान ढंग से कहता है ठीक है, मुझे ऐसी आशा है। जीवन में हर नई परिस्थिति में आप उसका खतरनाक पक्ष देख सकते हैं, और अगर हम हमेशा चीजों के नकारात्मक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह चर्च में विषाक्त है। हमें यह याद रखना होगा कि लोगों के साथ भगवान भी हमें प्रोत्साहित करते हैं, और उसने उनेसिफोरस को प्रोत्साहित किया है। और यदि आप सोचते हैं कि दो टिमोथी कितना छोटा है और यह कितना बड़ा पैराग्राफ है जो किसी को समर्पित है, यानी उसके बारे में पिछले काल में बात की गई है, लेकिन उसके बारे में पर्याप्त चर्चा की गई है कि आप देख सकते हैं कि उसने पॉल को कैसे उत्साहित किया और वह इसे कैसे बताता है, इसलिए यह तीमुथियुस के लिए प्रोत्साहन होगा। हमें याद दिलाया जा सकता है कि जब हमारे जीवन में उत्साहवर्धक लोग हों या हमारे जीवन में उत्साहजनक परिस्थितियां हों, तो आइए ईश्वर को धन्यवाद देने और उसकी स्तुति करने से न चुकें, और इन लोगों और परिस्थितियों में ईश्वर से प्रोत्साहन प्राप्त करें। दो तीमुथियुस अध्याय एक के बारे में मैं बस इतना ही कहूंगा। यह डॉक्टर रॉबर्ट डब्ल्यू यारब्रो और देहाती पत्रों पर उनकी शिक्षा, देहाती नेताओं और उनके अनुयायियों के लिए अपोस्टोलिक निर्देश 17:8, 2 टिमोथी 1 है।